Thank you. हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय, जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री राधा गिरधारी भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे, जय श्री कृष्ण। चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस द्वितीय सत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। विशेष स्वागत करते हैं इस ग्रेस लोकाध्यक्ष प्रभु का, जो यहां पर हमारे बीच में उपस्थित है। श्री राधा गिरधारी के वरिष्ठ भक्त एवं हमारे शिक्षा गुरु भी हैं। परम सौभाग्य है सभी ग्रंथों के राजा ग्रंथराज श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। श्रीमद् भागवत समस्त ग्रंथों का, समस्त वेद पुराण शास्त्र उपनिषद का पका हुआ फल है। कल हम सब लोग ने संक्षिप्त में श्रवण किया किस प्रकार से वेद व्यास जी चार वेद की रचना किए, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। वेदव्यास जी द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में सोचा कि कलयुग के जीव प्रायण अल्प आयुष्य, सभ्यो कलोस्मिन युगे जना, मंद सुमंद मतयह मंद भाग्य ही उपद्रुता। कलयुग में प्रायः बहुत कम आयु वाले लोग हैं, क्योंकि सतयुग में लोग 100,000 वर्ष तक जीते थे, त्रेता में 10,000 वर्ष तक जीते थे, द्वापर युग में 1,000 वर्ष की आयु थी, परंतु कलयुग में मात्र 100 साल तक लोग जीते हैं, पर 100 भी पूरा नहीं कर पाते। तो गांव में रहने वाले शुद्ध दूध और शुद्ध घी खाने वाले चाहे 100 साल तक जी पाएंगे, परंतु हम जैसे बंबई में धूल और धुएं के लोक में रहने वाले तो 60-70 में उठ जाते हैं। वेदव्यास जी ने देखा कि कलयुग में बहुत कम आयु वाले लोग हैं और बुद्धि भी बहुत कम है, ऊपर से मंद भाग्य, भाग्य भी बहुत, सब अभागे हैं। और बिना शास्त्र के इस संसार में लोग सुखी होकर रह नहीं सकते हैं। मैंने एक दृष्टांत दिया था, टीवी आप घर पे लेकर आइए और उस टीवी के साथ जो मैनुअल दिया है, जो किताब दी है, उसे नहीं पढ़ेंगे तो टीवी बिगड़ जाएगा। वैसे ही भगवान के द्वारा हम सबको शास्त्र दिया गया है,
इस शास्त्र को हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। जीवन में सुखी होना है और इस जीवन के बाद भगवत प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति करनी है तो शास्त्र पढ़ना चाहिए। परंतु भक्तों, द्वापर युग तक ये सभी शास्त्र केवल स्मृति में थे। शास्त्र तो थे परंतु स्मृति में थे। स्मृति का अर्थ होता है याद रखना। द्वापर युग तक सब लोग यह सब शास्त्र को याद रखते थे, लिपिबद्ध नहीं हुआ था। जैसे गीता में भगवान ने कहा, इमं विवस्वते योगम। कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया, विवस्वान ने मनु को, मनु ने इश्वाकु को दिया। इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में यह ज्ञान स्मृति में दिया जाता था। परंतु वेदव्यास जी ने सोचा, माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए केल कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने देखा कि संसार में माया मुग्ध जीव, माया में है फंसा हुआ जीव स्वतः कभी स्मृति शास्त्र को याद नहीं रख पाएगा। इसलिए जीवेर कृपाए केला, इस संसार के स्पेशल कलयुग के जीव पर कृपा करके वेद व्यास जी ने अनेक अनेक शास्त्र को लिपिबद्ध किया। भागवत में वर्णन है, सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने एक वेद का चार वेद में विभाजन किया, इसलिए उनका नाम व्यास हुआ। नहीं तो जन्म से वेद व्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन था। पराशर जी और सत्यवती के संगम से यमुना के तट पर यह तेजस्वी भगवान के शक्त्याविश अवतार का प्राकट्य हुआ। जन्म से कृष्ण द्वैपायन नाम था, परंतु वेदों का व्यास करने के कारण, वेदों का विस्तार करने के कारण इनका नाम वेद व्यास हो गया। तो वेद व्यास जी ने चार वेद, 108 उपनिषद और 17 पुराण। कहते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु का अधिकार वेदों पर नहीं है, इसलिए उन लोगों पर कृपा करने के लिए वेद व्यास जी ने 100,000 श्लोक से रचित महाभारत की रचना की। महाभारत ग्रंथ जिसमें 100,000 श्लोक है, महाभारत, रामायण, चार वेद, 108 उपनिषद, 17 पुराण, जीवों के कल्याण के लिए इतनी इतनी रचना कर दी। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि जिस वेद व्यास जी ने जीवों के कल्याण के लिए इतना कुछ लिखा, परंतु इतना लिखने के बाद स्वयं वेद व्यास जी का कल्याण नहीं हुआ। कलयुग के जीवों को सुखी करने के लिए वेद व्यास जी ने यह रचना की, परंतु इस रचना से स्वयं सुखी नहीं हो पाए। भक्तों विचार कीजिए, वेद व्यास जी जिस पुराण को लिखकर संतुष्ट नहीं है और उस पुराण को हम पढ़ेंगे तो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तो वेद व्यास जी बहुत चिंतित थे। नारद मुनि की कृपा से वेद व्यास जी को पता चला कि मैंने शास्त्र में परमात्मा तत्व को, ब्रह्म तत्व को बहुत सुंदर प्रकार से वर्णन किया है, परंतु साकार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य लीला का वर्णन नहीं किया है। इसलिए वेद व्यास जी ने अपने जीवन की अंतिम कमाई, अपने जीवन में अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवत की रचना की। तो श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी के जीवन का अंतिम ग्रंथ है और भागवत लिखकर वेद व्यास जी संपूर्ण संतुष्ट हो गए। यदि हमें भी जीवन में सुखी होना है, संतुष्ट होना है, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। नारद मुनि ने साफ साफ वेद व्यास जी को कह दिया, वेद व्यास जी यद्यपि आपने बहुत कुछ लिखा है, परंतु आपने जो लिखा है इसे कलयुग में केवल झगड़ा होगा और उस झगड़ा के फल के परिणाम के कारण आप अभी दुखी हो रहे हो। तो सत्य बात है। आप देखिए कोई शिव पुराण पढ़ता है तो उसमें लिखा है शिव जी भगवान वही सर्जन पालन प्रलय करते हैं। देवी पुराण पढ़ेंगे तो देवी ही सब कुछ है। गणपति पुराण पढ़ेंगे तो गणपति ही भगवान वही सृष्टि संचार इत्यादि करते हैं। तो यह तीनों पुराणों को पढ़कर कलयुग में सब एकत्रित होंगे तो यह अलग अलग लोग झगड़ा करेंगे, झगड़ा के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। परंतु श्रीमद् भागवत सुनकर सब लोग संतुष्ट होंगे। इसलिए हम सब भक्तों को यह बात ध्यान देने जैसी है कि जीवन में यदि सुनना है, यदि कुछ पढ़ना है तो श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। शास्त्र में कहा गया है किम श्रुते बहुर्भी शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावहे। श्रीमद् भागवत जैसा महान ग्रंथ हमारे पास उपस्थित है तो दूसरे अन्य अन्य ग्रंथ और अन्य पुराणों को पढ़कर क्या लाभ है, क्योंकि यह सारे अन्य ग्रंथ पुराणेश्च भ्रमावहे मन में भ्रांति पैदा करने वाले हैं। भागवत के अलावा आप कोई भी पुराण पढ़िए मन में केवल भ्रांति पैदा होगी, हमारा अनुभव है। परंतु मन को शांति देने वाला एकमात्र भागवत महापुराण है। फिर भी कुछ लोग भागवत को स्वीकार नहीं करते हैं और अन्य अन्य पुराण पढ़ते हैं, परंतु यदि आप बुद्धि से विचार करो तो भागवत के अलावा वेद व्यास जी हमें कुछ पढ़ने के लिए नहीं कह रहे। संस्कृत के व्याकरण में एक नियम है कि पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलवान होता है, अर्थात पूर्व में अर्थात पहले जो बात की जाती है उससे बाद अंतिम में जो बात करते हैं वो बलवान होती है, वो मुख्य होती है। उदाहरण के तौर पर मैं यहां पर आपको कहूं कि ये मेहुल प्रभु जी जो बैठे हैं उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसका स्वभाव बहुत बेकार है, उसके साथ कभी बैठना मत, उसके साथ कभी बात मत करना। मैं उसके बारे में बहुत बुराई करूं परंतु अंतिम में मैं कह दूं नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तो बुद्धिमान व्यक्ति ही क्या समझ सकता है इस बात। यद्यपि मैंने आगे बहुत कुछ कहा है परंतु अंत में मैंने जो कहा है वह मुख्य होगा। ठीक उसी प्रकार वेद व्यास जी ने बहुत सारे वेद शास्त्र पुराण लिखे हैं परंतु अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा, इसलिए भागवत पुराण जो है सार है, भागवत ही स्वीकार करने योग्य है। तो सभी शास्त्र में श्रेष्ठ कहते हैं निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणाम इदमस्तका। ऐसे ही संसार में नदी तो बहुत सारी है, गंगा यमुना गोदावरी कावेरी सरस्वती अलकनंदा इत्यादि नदी तो बहुत सारी है परंतु सभी नदियों में श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह है गंगा नदी। निम्न गाना यथा गंगा, विश्व में देवता तो बहुत सारे हैं, 33 करोड़ देवता हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ कौन है, कहते हैं भगवान अच्युत भगवान विष्णु। और इस संसार में वैष्णव तो बहुत सारे हैं, वैष्णव की संख्या बहुत है, परंतु सभी वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है, कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंभु भोलेनाथ शिव जी सबसे महान वैष्णव है। तो जैसे नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा नदी है, देवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु है और वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ भगवान शिव है, वैसे ही पुराणों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह है श्रीमद् भागवत। इसलिए इसे महापुराण कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण। पुराण का अर्थ होता है पुराना ओल्ड और महापुराण का अर्थ होता है महा ओल्ड सबसे पुराना। यद्यपि यह भागवत सबसे पुराना है, परंतु जब इसका हम अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तब नित्य नवीन आनंद मिलता रहता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण यहां पर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। संसार में श्रवण करने योग्य बहुत सारी वस्तुएं हैं, परंतु श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपनी टीका में बहुत सुंदर कहते हैं कि संसार में सबसे अच्छा कार्य है श्रवण करना, और श्रवण करने में भी यदि किसी वरिष्ठ वैष्णव से श्रवण करने मिले तो उससे भी अच्छा है, और उससे भी अच्छा है किसी वरिष्ठ वैष्णव से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने। और अंत में कहते हैं कि शुद्ध भागवत, शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का अवसर मिले, उससे बड़ा लाभ इस संसार में और कोई नहीं है, कोई नहीं है। जीवन का बहुत बड़ा लाभ हमको यहां पर प्राप्त हुआ है। यूं तो हमारा जीवन बीत रहा है भगवत विमुख रसों से, परंतु पुरोहित परिवार की कृपा से इतने छोटे गांव में भी ये भागवत कथा अमृत आ चुकी है। अब हम सबको चाहिए कि इसमें अवगाहन करें, स्नान करें। कभी कभी होता है कुछ लोग, यह भागवत कथा अमृत की गंगा हमारे घर तक आ चुकी है, लेकिन स्नान करने की बात तो दूर रही, आचमन भी नहीं करते हैं। अब क्या किया, प्रभुपाद जी की कृपा से यहां तक भागवत कथा आई है, और यदि इस अवसर का लाभ हम नहीं उठाते हैं तब तो ऐसा ही होगा जैसे गंगा के किनारे कोई प्यासा मर जाए। गंगा के किनारे पर कोई मर गया और बहुत लोग एकत्रित हुए, पूछा कौन मरा, क्यों मरा, क्यों मरा, तो जवाब मिला प्यासा मर गया। अब गंगा नदी अर्थात सबसे डबल ट्रिपल फिल्टर कीजिए, जो बिस्लेरी से भी शुद्ध जल है, उस गंगा के तट पर यदि कोई प्यासा मर जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। प्रभुपाद जी की कृपा से भागवत कथामृत की गंगा यहां तक आ चुकी है, और यदि इसमें हम स्नान नहीं करें, ध्यान से नहीं श्रवण करेंगे, तब तो वो गंगा नदी वाली होगी, प्यासे मर जाएंगे। तो आइए श्रीमद् भागवत कथा का श्रद्धा से एवं ध्यान से सब लोग श्रवण करें। हृदय में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास भगवान के प्रति और भागवत के प्रति, और इस विश्वास के साथ, जितने दृढ़ विश्वास के साथ कथा श्रवण करेंगे, उतनी यह कथा हमारे जीवन में ज्यादा फल प्रदान करेगी। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार वेद व्यास जी समाधि में बैठे हैं, और समाधि में बैठकर श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अवतरण कराए। वास्तव में यह भागवत वेद व्यास जी की समाधि की भाषा है। वेदव्यास जी ने समाधि में जो देखा वही है श्रीमद् भागवतम। जब वेदव्यास जी ने यह भागवत की रचना कर ली, उस समय वेदव्यास जी बहुत बूढ़े हो चुके थे। भागवत उनके पास था, परंतु अब इस भागवत का प्रचार कौन करे? तो वेदव्यास जी के मन में इच्छा थी कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जाता जो इस भागवत का प्रचार कर सके। अब जब भगवान के भक्त की इच्छा होती है तो भगवान उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करते हैं। एक समय की बात, देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ हुआ। अब सब लोग इस कथा को जानते होंगे। त्रेता युग में एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता सिपाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शिव कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए गए और साथ में संग सती जग जननी भवानी पूछे ऋषि अखिलेश्वर जाने। साथ में अपनी पत्नी सती को साथ लेकर गए हैं। देखिए भगवान शिव हम सब गृहस्थों के लिए बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। शिव जी गृहस्थ हैं और गृहस्थी को कैसे रहना चाहिए शिव जी अपने आचरण से सिखाते हैं। कथा सुनने के लिए शिव जी कुंभज ऋषि के पास गए तो अकेले नहीं गए हैं, संग सती अपनी पत्नी को साथ में लेकर गए। एक पति का कर्तव्य होता है भगवान के भजन में भगवान की भक्ति में अपनी पत्नी को साथ में रखें। कई बार देखा गया है कि पति लोग अकेले घर से निकल जाते हैं, परंतु यह एक आदर्श है शिव जी। चाहे शिव जी हो चाहे मनु महाराज हो, मनु महाराज भी जब वन में तपस्या करने गए तो अपनी पत्नी शत्रुपा को साथ में लेकर गए। तो इस प्रकार शिव जी अपनी पत्नी को कथा सुनाने के लिए लेकर गए, परंतु शिव जी ने तो बहुत ध्यान से कथा सुनी, सती कथा सुनते सुनते सो गई। सोने का स्वभाव स्त्रियों का। जब वापस लौटे त्रेता युग आ चुका था, भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हो चुका था और कैके के द्वारा भगवान को वनवास मिल गया था, रावण सीता का हरण करके चला गया था और उस समय भगवान श्री रामचंद्र विवल होकर रोते हुए अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहे थे। अद्भुत दृश्य है। जो भगवान एक सेकेंड में करोड़ों सीता को प्रकट कर सकते हैं वह भगवान अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, और रोते भी हैं तो कैसा रोते हैं, भगवान का रोना भी अद्भुत है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान श्री रामचंद्र अपनी पत्नी के विरह में दर दर भटक रहे हैं, वृक्ष को पूछ रहे हैं, प्राणी को पशु को पक्षी को पूछ रहे हैं कि हे खग हे मृग क्या आपने मेरी पत्नी सीता को देखा है। भगवान की आंखों में अजस अविरत अश्रु धारा बह रही है। आज कुंती महारानी का प्रसंग आ रहा है और महारानी कुंती अपनी प्रार्थना में कहती हैं, प्रभु आप जब अवतार लेते हो और ऐसी लीला करते हो जानने वाले भी आपको जान नहीं पाते, ये ब्रह्मा आपका पहला पुत्र इस संसार का प्रथम जीव भी आपकी लीला को देखकर विचलित हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र इस प्रकार से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे और शिव जी और सती ये दोनों वापस लौट रहे थे। शिव जी ने तो मन ही मन भगवान को प्रणाम किया, परंतु सती को प्रश्न उठा कि ये लड़का इस प्रकार से पशु को पेड़ को पक्षी को पूछ पूछ कर अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है और मेरे प्रभु इसे प्रणाम कर रहे हैं, ये कौन है। शिव जी ने कहा कि ये साक्षात परब्रह्म भगवान है, परंतु सती को विश्वास नहीं हुआ। यदि वहां पर ध्यान से कथा सुन ली होती तो विश्वास हो जाता, परंतु कथा में सो गई, कथा के सिद्धांत को नहीं समझ पाई और यहां पर भगवान को नहीं पहचान पाती। तब सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई। जो भगवान इस संसार में चर चर अचर सभी जीवों की परीक्षा लेते हैं, सती उस भगवान की परीक्षा लेने गई। और इस प्रकार भगवान की परीक्षा लेने के कारण और झूठ बोलने के कारण भगवान शिव जी ने उसे त्याग दिया और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उसने आत्महत्या कर ली। तत्पश्चात वही सती दूसरे जन्म में हिमालय के वहां पार्वती के रूप में जन्म ली और सती ने हट पकड़ी कि विवाह करूंगी तो केवल शिव जी के साथ। कई लोगों ने समझाया कि देखो वह शिव जी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम तो इतनी सुंदर हो, कहां शिव और कहां तुम। अंत में सप्तर्षि उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और सती को कहा कि देखो शिव जी के पास अपने लिए रहने के लिए घर नहीं है, न तो उसके पास धन है, पाउडर लगाने की जगह शमशान की भस्म लगाते हैं, कभी सलून में बाल कटाने को भी नहीं जाते हैं, कपड़े पहनने का कोई ढंग नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह करोगे। तब पार्वती ने इतना ही कहा कि देखो करोड़ों जन्म तो कुंवारी रह जाऊंगी, कोटि जन्म रही रगर हमारी, बरु शंभु न तो रहूं कुंवारी, विवाह करूंगी तो केवल शिव जी के साथ। कुंवारी रह जाऊंगी परंतु विवाह मात्र शिव के साथ करूंगी। शिव जी ने देखा इतनी दृढ़ता है, अंत में शिव जी ने पार्वती के साथ विवाह किया। विवाह करके गृहस्थ जीवन उनका शुरू हुआ। बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन जी रहे थे, परंतु एक दिन नारद मुनि वहां पर पधारे। कई लोगों के जीवन में होता है, अच्छी गृहस्थी में आग लगाने वाले संसार में बहुत होते हैं। यद्यपि नारद मुनि आग लगाने नहीं आए हैं, वे तो सुखदेव का प्राकट्य कराना चाहते हैं, परंतु शिव और पार्वती का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। एक दिन की बात, शिव जी कुछ काम के लिए बाहर गए थे, पार्वती अकेली घर पर थी। नारद मुनि पधारे, नारायण नारायण करते हुए पार्वती जी ने स्वागत किया। नारद मुनि ने देवी पार्वती को पूछा कि देवी आपका गृहस्थ जीवन ठीक तो चल रहा है ना, सब ठीक ठाक है। पार्वती जी ने कहा बहुत अच्छा, कहा आप दोनों के पति पत्नी के बीच में कोई पर्दा तो नहीं है। पार्वती ने कहा कोई पर्दा नहीं है, मैं मेरी सारी बात मेरे पति को बता देती हूं और मेरे पति भी अपनी सारी बात मुझे बता देते, मुझसे कुछ नहीं छुपाते। अच्छा तो बताओ आपके पति के गले में जो मुंड माला है, जो खोपड़ी की माला धारण करके रखी है, वो किसकी खोपड़ी है। पार्वती जी ने कहा कि ये तो मैंने कभी उसे पूछा नहीं, और चलो मैंने नहीं पूछा, उसने कभी बताया नहीं, आने दो उसको घर पर। नारद मुनि ने कहा नारायण नारायण, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। नारद मुनि चले गए और यहां पर पार्वती क्रोधित हो गई, आने दो उसे घर पर। शिव जी अपनी ऑफिस, अब ऑफिस तो नहीं, ऑफिस में तो हम लोग जाते हैं, शिव जी अपना काम करके जब वापस आए, देखा देवी का मूड कुछ खराब है। शिव जी ने कहा क्या हुआ आपको। पार्वती कुछ नहीं बोली। तब शिव जी ने विचार करके कहा घर पर कोई आया था, नारद जी तो घर पर नहीं आए थे। पार्वती ने कहा हाँ वो घर पर आए थे। शिव जी ने कहा समझ गया, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। पार्वती ने कहा कि हमारा विवाह हुआ, इतना समय हो गया और आपके गले में इतनी सुंदर चेन पहनी है, आपने आज तक नहीं बताया किसने दी आपको। अब चेन नहीं, मुंड की माला थी। तब शिव जी ने कहा देवी मैं तुम्हें सत्य कह रहा हूं, इस संसार में मैं भगवान के बाद यदि किसी से प्रेम करता हूं तो तुमसे करता हूं, चाहे न भी करते हो तो कहना चाहिए। घर गृहस्थी को ठीक रखने के लिए एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी के सामने यह इजहार करे कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, और वास्तव में पत्नी को और कुछ नहीं चाहिए, धन संपत्ति। पत्नी को यदि पति प्रेम से दो शब्द कह दे कि देवी प्रिय मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, पत्नी के जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। लेकिन दुर्भाग्य आज का पुरुष यही नहीं कर सकता है। फिर शिवजी ने कहा कि भगवान के बाद यदि किसी से प्रेम करता हूं तो तुमसे करता हूं, और इसका प्रमाण क्या है? तो पार्वती, तुम जब जब मरती हो तब तब मैं तुम्हारे शरीर से इतना प्रेम करता हूं, तुम्हारी खोपड़ी को मैं धारण करके रखता हूं। देवी, ये मेरे गले में जितनी खोपड़ी है, तुम जितनी बार मरी हो उतनी खोपड़ी मैंने मेरे गले में धारण करके रखी है, गिन लो। पार्वती प्रसन्न हो गई, परंतु स्त्रियों में भी कभी कभी बुद्धि आ जाती है। पार्वती सोचने लगी कि मुझे इतनी बार मरना पड़ा, खोपड़ी को गिन लिया 1 2 3 4, मैं इतनी बार मरी और आप तो एक ही एक बने रहे। तब पार्वती जी ने शिव जी को पूछा कि मुझे इतनी बार मरना पड़ा और आप एक भी बार नहीं मरे, आपके पास ऐसा क्या है जिसके कारण आप कभी मरते नहीं हो? शिव जी ने कहा, देवी मैं अमर कथा जानता हूं, मैं अमर कथा जानता हूं, इसलिए मैं अमर हो गया हूं, मैं कभी मरता नहीं हूं, और तुमको बार बार मरना पड़ता है। अब तो पार्वती जी प्रेम से कहने लगी, पतिदेव क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो? करता हूं। तो क्या आप नहीं चाहते हो कि मैं भी आपकी तरह अमर हो जाऊं? चाहता हूं, तो आप मुझे भी सुना दो ना यह अमर कथा। शिव जी ने कहा कि यह अमर कथा सुनने के लिए योग्य पात्र चाहिए, योग्य समय चाहिए, योग्य स्थान चाहिए, अभी नहीं सुना सकता। पार्वती ने जीत पकड़ी, मुझे अभी सुनाओ। शिव जी ने कहा, समय आने पर सुना दूंगा। इतना कह के 1 2 3 पार्वती रोज वह याद करके कहती थी कि मुझे सुनाओ सुनाओ। तब एक दिन की बाद शिव जी अपनी पत्नी पार्वती को लेकर अमरनाथ में पहुंचे। आज लोग जाते हैं अमरनाथ की यात्रा में। अमरनाथ में पहुंचे, आचार्यों का कहना है वहां पहुंचकर शिव जी ने अपना डमरू बजाया, और उस डमरू के आवाज को सुनकर अमरनाथ में रहने वाले सभी जीव वह छोड़कर भाग गए। शिव जी ने भगा दिया, क्योंकि यदि कोई जीव यह अमर कथा सुन लेता तो वह भी अमर हो जाता और भगवान की प्रकृति पलट जाती। भगवान शिव जी प्रकृति को बदलना नहीं चाहते थे। जब शिव जी ने देखा कि यहां पर कोई नहीं है, तब एक वृक्ष के नीचे शिव जी बैठे और पार्वती को कहे कि देखो देवी, जब जब मैं भागवत कथा, अमर कथा और भागवत कथा दोनों एक ही है। ऐसा नहीं है कि अमर कथा कोई अलग है, भागवत कथा अलग है, यह भागवत कथा को ही अमर कथा कहा जाता है। तो शिव जी ने कहा कि देवी, जब जब मैं अमर कथा या भागवत कथा करता हूं, तब तब मुझे मेरे हृदय में भाव उत्पन्न होता है, मेरी आंखें बंद हो जाती है, इसलिए ध्यान रखना, मैं तो मेरी कथा शुरू कर रहा हूं परंतु तुम सोना मत, क्योंकि अगले जन्म में सोने के कारण तुम्हें मरना पड़ा, और अभी भी यदि सो गई तो अमर नहीं हो पाओगे। पार्वती ने कहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं सोऊंगी। शिव जी ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा, मेरी तो आंख बंद होगी। पार्वती ने कहा कि मैं हुंकार भरूंगी, आप कथा सुनाइए, मैं बारंबार हां 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 ऐसे करती रहूंगी। तो ठीक है, शिव जी ने भागवत कथा प्रारंभ की और लगातार शिव जी भागवत कथा बोलते गए, परंतु सुनते सुनते अब स्त्री का स्वभाव से मजबूर पार्वती को नींद आ ही गई। ये नींद भी कैसी वस्तु है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, यदि कोई व्यक्ति पूरे विश्व को जीत कर आया है परंतु उसके ऊपर यदि नींद आ गई तो उसे भी सुला देती है। कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, ये नींद किसी को नहीं छोड़ती है। हमारे नरसिंह मेहता तो गाते हैं, जोगी ने लुटा ते तो भोगी ने लुटा, इस संसार में जो भोग भोगते हैं उनको तो निद्रा ने लूट लिया, परंतु योगियों को भी लूट लिया, भक्त को भी नहीं छोड़ती है। और ये जब आती है तब व्यक्ति किसी का नहीं रहता है, निद्रा के वश में हो जाता है। निद्रा वैसे तो बहुत सूक्ष्म वस्तु है, परंतु इतनी मजबूत शक्ति है। और क्यों ना मजबूत नहीं होगी, क्योंकि यह कुंभकर्ण की बहन है। कुंभकर्ण को जानते हैं आप सब लोग जानते हैं, 6 महीना तक सोता था और फिर भी जगने का नाम नहीं लेता था। उसे जगाया जाता था, कई टन मांस ढोल नगाड़े पखावज बजा बजा कर उसे जगाते थे और मांस और मदिरा पीकर फिर से सो जाते। ऐसी कुंभकर्ण की यह बहन है और ये जब आती है तो सुला देती है। परंतु फिर भी यदि सतर्क रहा जाए इस निद्रा से हम बच सकते हैं। देवी पार्वती को नींद आ गई, परंतु शिवजी ने जब डमरू बजाया तो वहां पर एक तोते का अंडा था शुक का, और तोता इत्यादि शिवजी के डमरू को सुनकर चले गए। परंतु वह अंडा फूटा और अंडे से निकला हुआ बच्चा उड़ नहीं पाया, और शिवजी जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वही वृक्ष के ऊपर यह तोते का बच्चा था। और वास्तव में देखा जाए तो यह कोई साधारण शुक नहीं था, यह श्रीमती राधा रानी का नित्य पार्षद, नित्य धाम में भगवान का नित्य पार्षद था। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के बीच में जो भी मैसेज, जो भी खबर पहुंचानी थी वह खबर पहुंचाने वाला यह तोता था, तोते का बच्चा। इसलिए आचार्य कहते हैं लीला शुकोसो विषभानु जाया। ये कौन सा शुक है, कहते हैं विषभानु जाया, विषभानु की ज माने जन्म, विषभानु की पुत्री श्रीमती राधा रानी का यह शुक है। पवित्र चंचु प्रिय चुंब नैन, और जिसको श्रीमती राधा रानी अपने हृदय में लगाकर रखती थी, इतना प्रेम करती थी। एकांतिको नन्य रहस्य पाठी गोलोक प्रसाद सदा निवासी, सदा गोलोक में रहने वाला यह शुक, परंतु भगवान की इच्छा के कारण यह राधा रानी का शुक इस शिवजी जहां पर बैठे हैं वहां वट वृक्ष के नीचे बच्चे के रूप में है। और ये अमर कथा भागवत कथा सुनने में उस शुक को बहुत आनंद आया, और देखा कि पार्वती सो गई है और शिवजी तुरंत भागवत कथा करना बंद कर देंगे तो पार्वती का सोने पर वह खुद हुंकार देने लगा और शिवजी की कथा जारी रही। जब कथा संपन्न हो गई तब शिवजी ने आंख खोल के देखा तो पार्वती सोई हुई थी। तब शिवजी के मन में प्रश्न उठा, तो हुंकार कौन दे रहा था, ये तो सो गई है तो हुंकार देने वाला कौन। शिवजी ने आजू बाजू में ढूंढा, ऊपर वह शुक बैठा था। शिवजी क्रोधित हो गए, हाथ में त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर जैसे उस शुक को मारने गए तुरंत शुक वहां से उड़ गया। शुक आगे आगे, शिवजी पीछे पीछे, और उड़ते उड़ते वहीं पर बाजू के पर्वत में बद्रीनाथ स्थान में वह शुक पहुंचा। शिवजी वहां पहुंचे, वेदव्यास जी की पत्नी जमाई ले रही थी, वह छोटा सा शुक वेदव्यास जी के पत्नी की मुख से उनके हृदय में चला गया और शिवजी हाथ में हथियार लेकर खड़े रह गए। फिर भी शिव के हृदय मन में क्रोध है कि अभी मार डालूंगा, परंतु वेदव्यास जी वहां पर आए और भोलेनाथ को कहे कि हे शिव जी, क्या आप इस अमर कथा की महिमा को नहीं जानते हो? आप नहीं तो कहा है जो व्यक्ति यह कथा सुनेगा वह अमर हो जाएगा। शिव जी इन्होंने अमर कथा सुन ली है, अब इसे आप नहीं साक्षात भगवान भी नहीं मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत कथा का श्रवण किया है, कोई नहीं मार सकता। शिव जी वहां से वापस चले गए और वह शुक वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ में धीरे धीरे बड़ा होता गया। परंतु 9 महीना बीता, 10 महीना, 1, 2, 5 साल बीत गया, परंतु वो बालक बाहर नहीं आया। कहते अंत में 12 साल बीत गए, फिर भी वो बालक बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। वेदव्यास जी पूछ रहे हैं कि हे बालक, तुम बाहर निकलो, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। तब अंदर से उन्होंने जवाब दिया कि यदि मैं बाहर निकलूंगा तो संसार की माया मुझे मोह लेगी। देखिए कितना सुंदर उपदेश हम सबको मिल रहा है। अमर कथा सुनने वाला जो अमर हो चुका है, जो भागवत सुन चुका है, वह भी भगवान की माया से डर रहा है। और हम लोग के पास कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बिंदास विचरण करते हैं। तब भगवान ने समर्थन दिया, भगवान के समर्थन से वेदव्यास जी की पत्नी के गर्भ से वह शुक का पुत्र के रूप में जन्म हुआ। परंतु जन्म होते ही वह बालक वहां से जंगल में जाने के लिए भाग गए। सोचा कि यदि मैं घर पर रहूंगा तो मोह माया और ममता में फंस जाऊंगा, जंगल में चला गया। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आज। वेदव्यास जी ने सोचा कि इतने साल के बाद बूढ़ा हो गया और इतने साल के बाद एक पुत्र की प्राप्ति, परंतु वह भी जन्म लेकर भाग गया। वेदव्यास जी उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, परंतु अपने पुत्र को पकड़ नहीं पाए। अंत में वृक्षों ने उत्तर दिया कि हे वेदव्यास जी, आप वापस चले जाइए। वेदव्यास जी वापस आए और यहां पर वह शुक ब्रह्म समाधि में स्थित हो गया, ब्रह्मानंद का आनंद। सुध गोस्वामी का प्रश्न था कि सुखदेव गोस्वामी तो ब्रह्मानंद में लीन थे, ब्रह्मानंद का आनंद अनुभव कर रहे थे, तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मानंद को छोड़कर भागवत पढ़ने का कष्ट क्यों किए? तब इसका उत्तर देते हैं कि वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के गुण रूपी एक श्लोक अपने शिष्यों को पढ़ाया और भगवान श्री कृष्ण की कृपा रचित एक श्लोक पढ़ाया। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम, यह दोनों श्लोक रटाकर वेदव्यास जी के शिष्य जंगल में जा जाकर गाने लगे और ब्रह्म समाधि में लीन। जब सुखदेव गोस्वामी ने यह श्लोकों को सुना और सुना के भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है और भगवान इतने कृपालु है, भगवान की कृपालुता का अनुभव करके सुखदेव गोस्वामी की समाधि टूट गई। कहते हैं आत्म रामश्च मुनयो, जो आत्म राम है, आत्म राम का अर्थ होता है जो आत्मा में रमण करने वाला है, जो मुक्त काम है, जिसे संसार की कोई कामना नहीं है, ऐसे लोग भी भगवान के रूप और भगवान की लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीला इतनी अद्भुत है। ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहा था यह लड़का, ब्रह्म समाधि में स्थित था, परंतु जैसे ही कृष्ण के गुण रूप और लीला की चर्चा सुनी, तुरंत समाधि टूट गई और ढूंढने लगा कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, और पकड़कर कहा कि आपको यह श्लोक किसने सिखाया? कहा हमारे गुरुजी ने। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप मुझे अपने गुरुजी के पास लेकर जाएंगे, मुझे भी यह सीखना है। तब सुखदेव गोस्वामी को गुरुजी के पास लेकर गए, पता चला पिताजी ही गुरु है। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। इस प्रकार से यह गुरु शिष्य परंपरा में श्रीमद् भागवत, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने नारद, नारद जी ने वेदव्यास और वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को यह भागवत श्रवण कराया। इस प्रकार यह भागवत की परंपरा यहाँ पर सुध गोस्वामी वर्णन करते हैं। अब सुध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनि को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें राजा परीक्षित और पांडवों की कथा सुनाऊंगा, क्योंकि ये पांडव और उनके पौत्र परीक्षित भगवान के परम भक्त थे। तो उनकी कथा प्रारंभ करते हैं एक प्रसिद्ध श्लोक के साथ यदामृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावीद्वगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे
यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरेश्वतो वीरगतिं गतेषु। कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ और उस महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि में सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। यह महाभारत का युद्ध कहते 18 दिन तक हुआ और 18वें दिन वृकोदरा विद्व गदाभिमर्श, वृकोदर अर्थात भीम के गदा से भगनोरु दंडे धृतराष्ट्र पुत्रे 18वें दिन कुरुक्षेत्र की भूमि में दुर्योधन की समस्त सेना का नाश हो चुका था, केवल दुर्योधन बचा था। और इस 18वें दिन भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूटी और दुर्योधन की जंगा टूटने पर म्रियमाण स्थिति में मृत्यु की अंतिम घड़ी गिन रहा है, कुरुक्षेत्र की भूमि में कराह रहा है। रात का समय है, अंधेरी रात है। उसी समय महाभारत के 3 वीर अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये तीनों लोग युद्ध छोड़कर भाग चुके थे, इसलिए बचे थे। ये तीनों लोग अपने मित्र दुर्योधन को देखने के लिए उस अंधेरी रात में पधारे हैं और उस समय बीच रणभूमि में दुर्योधन पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है और मरने की अंतिम घड़ी गिन रहा है। और उस समय भरतुं प्रिय द्रोणी रीति स्म पश्यन् कृष्णा सुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्वी प्रियमेव तस्य युगोप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। उस समय अपने मित्र का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा ने देखा मेरा मित्र दुर्योधन बहुत दुखी है। अश्वत्थामा ने सोचा कि मरते मरते में मेरे मित्र को प्रसन्न करूंगा, सुखी करूंगा। अपने मित्र का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा उस अंधेरी रात में गया और सोए हुए पांडव, पांचों पांडवों के मस्तक काट कर लेकर आया और सब मस्तकों को एक गुनी में भरकर दुर्योधन के पास आया और कहा कि मित्र डरो मत, मैं अभी अभी पांचों पांडवों का वध करके आया हूं। दुर्योधन ने कहा हो नहीं सकता, पहले मुझे यह बताओ कि तुम जब पांडवों का मस्तक काटने गए तब कृष्ण कहां थे, क्योंकि कृष्ण जहां पर है वहां पर पांडवों का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। दुर्योधन ने देख लिया, महाभारत के युद्ध में यह दुर्योधन को एहसास हो गया कि जिस पक्ष में कृष्ण खड़े हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, जिस पक्ष में भगवान कृष्ण है और अर्जुन जैसे गांडीवधारी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उस पक्ष की हमेशा विजय होती है, उसे कोई नहीं मार सकता। देख लिया, बार बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की। आज ही के प्रसंग में महारानी कुंती इस बात को कहेगी। और अभी अभी दुर्योधन का मरने का कोई प्रश्न ही नहीं था, दुर्योधन को कोई नहीं मार सकता था। जब 100 कौरव में से 99 कौरव मर गए, केवल दुर्योधन बचा था। गांधारी को पता चला कि मेरे 100 पुत्र में से एक ही पुत्र बचा है। तब गांधारी ने दुर्योधन को बुलाकर कहा कि दुर्योधन, कल सुबह तुम निर्वस्त्र बिना वस्त्र पहने मेरे सामने आ जाना, मैं तुम्हें लोहे का बना दूंगी, फिर तुम्हें कोई नहीं मार सकता। देखिए, और गांधारी में यह सामर्थ्य था क्योंकि पतिव्रता का बल उसमें था। धृतराष्ट्र ने जब विवाह किया गांधारी के साथ, पितामह भीष्म धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का जब हाथ मांगने गए और गांधारी को पता चला कि जिससे मेरा विवाह होने वाला है वे जन्म से अंधे हैं, उसी समय से गांधारी ने अपने आंख पर पट्टी बांध ली। गांधारी को बहुत लोगों ने समझाया कि तुम क्यों अपनी आंख के ऊपर पट्टी बांध रही हो, तुम क्यों अंधी हो रही हो, यदि तुम्हारी आंख खुली है तुम देख सकती हो तो तुम्हारे पति की सेवा भी होगी। तब गांधारी ने इतना ही कहा, देखो पत्नी जो होती है हमेशा पति से एक कदम पीछे होती है, और यदि मैं मेरी आंखें खुली रखूंगी और मेरे पति की आंख बंद होगी तो हो सकता है भविष्य में मुझे अहंकार आएगा कि मैं मेरे पति से कुछ आगे हूं, इसलिए यदि मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी अंधी हूं। और इस प्रकार से गांधारी जो थी पतिव्रता नारी थी, और पतिव्रता का तेज उसके आंख में था, और बुलाया दुर्योधन को, बेटा कल सुबह आ जाना निर्वस्त्र बिना वस्त्र पहने आना। और दूसरे दिन सुबह भोर में ब्रह्म मुहूर्त में दुर्योधन बिना वस्त्र पहने अपनी मां गांधारी के पास जा रहा था। परंतु वेदा हम समतितानी भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यदि ये चला गया तो फिर इसे कोई नहीं मार सकता है, हो सकता है ये पांडवों को मार दे। भगवान श्री कृष्ण बीच में खड़े रह गए, कहा दुर्योधन जी कहां जा रहे हैं? दुर्योधन ने कहा माता जी के पास जा रहा हूं। भगवान ने कहा ठीक है, माता के पास जा रहे हो तो कुछ कपड़े तो पहनकर जाओ। दुर्योधन ने कहा परंतु मां ने निर्वस्त्र आने के लिए कहा है, कपड़ा पहनने के लिए मना किया है। भगवान कृष्ण ने कहा वो तो मां है, वो वात्सल्य भाव में है, परंतु तू तो आधा बूढ़ा हो चुका है, और इस प्रकार से बिना वस्त्र के मां के पास जाएगा कितना गंदा लगता है, छी 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 छी। कृष्ण भी बोलने में इतने पटु है, कृष्ण ऐसा बोले दुर्योधन को शर्म आ गई। भगवान ने कहा कम से कम केले का पत्ता तो डालकर जा। दुर्योधन ने सोचा चलो केले का पत्ता पहनने में क्या हर्ज है। तब दुर्योधन ने अपने शरीर पर केले का पत्ता पहन लिया और अपनी मां के पास जाकर खड़ा रह गया, कहा माताजी मैं आ गया हूं। तब कई वर्षों के बाद गांधारी ने अपनी आंखों से पट्टी खोली और गांधारी का तेज दुर्योधन के ऊपर पड़ा, दुर्योधन पूरा लोहे का हो गया। परंतु जितने भाग में दुर्योधन ने वो वस्त्र पहना था, केले का पत्ता पहना था, वह भाग लोहे का नहीं हुआ। और गांधारी ने जब आंख खोल के देखा कि ये वस्त्र पहनकर आया है, गांधारी के मन में बहुत अफसोस हुआ, बेटा मैंने तुझे कहा था निर्वस्त्र आना, लेकिन फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण, फिर दुर्योधन जब भीम के साथ युद्ध करने के लिए आया तो भीम कितना प्रहार कर रहे थे, अपनी पूरी स्फूर्ति पूरी शक्ति के साथ मार रहे थे, दुर्योधन को कुछ नहीं हो रहा था। तब भगवान को याद आया अरे ये तो लोहे का हो चुका है, परंतु भगवान ने कहा मैंने कपड़ा चड्डी पहना ही थी, उतना भाग लोहे का नहीं हुआ है। भीम को इशारा किया, भीम उनकी जंगा जो है वह लोहे की नहीं है, जंगा के ऊपर वार करो। इसलिए कहते हैं